उसे मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं साथ साथ वो चलते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ
शांति। आज का शुभ दिन हर एक आत्मा समझती है क्या है। आज सच्ची दीपावली। बाबा तो हमको कहता है हर रोज, आप ब्राह्मणों के लिए तो रोज दीपावली है। क्यों क्यों दीपावली है? क्योंकि आत्मा जगी हुई है। इतना ही नहीं, आत्मा जगने के बाद क्या करना है? दीपमाला बनाना है, हर एक आत्मा को जगाने की निमित्त बनना है। कब जगा सकेंगे? जब हम खुद भरपूर होके दूसरों को जगाएंगे, खुद ऐसी स्थिति बनाकर दूसरों को की सर्विस करेंगे। तो इसलिए मधुबन से सभी ब्राह्मण परिवार को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। साथ साथ यज्ञ के और दीपावली की बहुत गहरी संबंध है, क्योंकि ऐसे तो यज्ञ की स्थापना 1937 कहेंगे, मगर शुरुआत तो 1936 से शुरू हुआ। मगर जब कायदा मुजब बाबा मम्मा दादियां सब 1937 में यज्ञ का जो विधि पूर्वक स्थापित हुआ, उसमें बाबा मामा लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में माना यज्ञ में समर्पित के रूप में आ गए। दादी की अपना अनुभव कई बार सुनाई मधुबन के अंदर, आप यूट्यूब में भी है, सुन सकते हैं। क्योंकि दादी कहती है जैसे ही मैं लौकिक परिवार से 1937 में बाबा के पास आया, अलौकिक जीवन में रहा, बस लौकिक परिवार समाप्त, अलौकिक जीवन की शुरुआत हुआ। उसके साथ साथ उसके बाद 1938 में जब कराची में गए, वो वहाँ 14 साल का जो बट्टी शुरू हुआ ये दीपावली के। इसलिए यज्ञ का दीपावली से बहुत गहरी संबंध है, अर्थात दीपावली से अपना यज्ञ की स्थापना हुई। ऐसे दीपावली में हरेक क्या प्रण लेना चाहिए, क्या दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? शुरुआत की स्लोगन था, जब तक हम स्वर्ग नहीं लाएंगे सुख चैन से नींद नहीं करेंगे। क्या सचमुच ऐसी सेवा मैं कर रहा हूं? अपने आप से पूछो, अपने आप से प्रण लो, क्योंकि अभी समय देख रहे हो, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा, खतरनाक, माना दिन प्रतिदिन परिस्थितियां विपरीत हो रहा, उसलिए ऐसे समय में आत्माएं तड़प रहे, दुख की अशांति हो रहे, उसलिए ऐसे समय में हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य बनता है, क्या बनता है कर्तव्य, हर आत्मा को सुख शांति चैन देने की। कब दे सकेंगे, जब हमारे अंदर वो भरपूरता हो, वो हमारे जैसा, देखो हम हरेक को कहते जो भी मिलते ओम शांति, सचमुच ओम शांति का मंत्र मेरे अंदर इतना धारणा हुई है, ओम शांति कहने से मैं अंदर से शांत होता हूं, ये चेक करना है। इसलिए आज हम इस दिन पर यही प्रण लेवे, सुख शांति तब चैन से सोएंगे जब तक स्वर्ग नहीं बने, इसलिए ऐसा 200 नाखून का जोर लगाकर ईश्वरीय सेवा करनी होगी। ओम शांति। आज हम प्रश्नोत्तर का श्रृंखला चल रहा, आज का प्रश्न है, किसी भी बात की उलझन मन में उलझन पैदा ना करे उसकी विधि क्या है। उत्तर है, समर्थ बाप को सदा साथी बनाकर रखो। तो किसको, समर्थ बाप को, किसी भी उलझन वाली बातों में मन उलझने में नहीं आएगी, कब, समर्थ बाप को साथ रखने से। बड़ी बात छोटी, पहाड़ी भी राई हो जाएगी। बस सदा यही याद रहे कि मेरा वचन, मेरा बाबा, मेरा सेवा, जो बाप का सो मेरा, जो बाप का कर्म वह मेरा कर्म, जो बाप के गुण वह मेरा गुण, संस्कार, श्रेष्ठ कर्म, जब सारी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, जो बाप की वह आपकी हो गए, तो सदा खुशी रहेगी, कभी भी कोई उलझन मन को उलझाएगी नहीं। बाबा ने इसमें क्लियर किया, अभी हम इसके डिटेल्स में जाएंगे। उलझने की कारण क्या है, उलझने के कारण है निश्चय की कमी। ज्ञान में आएंगे, आने के बाद सबसे बड़ी स्टेप है निश्चय। क्या, किस किस में निश्चय चाहिए, एक बाप में, स्वयं में और ड्रामा में। बाप में क्या निश्चय चाहिए, बाप में निश्चय चाहिए कि वही है बाप जो कलप पहले वाला हमारा बाप है। बाबा ने कई बार जब साकार मुरली में बोला, बहनों ने वहां से चिट्ठी लिखा बाबा को, बाबा ये भाई बहुत अच्छा समझा, बहुत खुश हो गया, तो बाबा ने सीधा बोला, खुश हो गए तो वो बच्चा जब बाप समझा तो भाग क्या आता। माना इसका अर्थ है, जब बाप में निश्चय है, बाबा जो भी कहा, कई बार होता है उलझन कब पैदा होता है, एक को बाबा ने कहा भाई तुम वो चाय नहीं पीना, मगर एक को कहा आप पी सकते हो, वो तीसरा, ये सुन के बाबा ये क्या बोला। अभी अभी अव्यक्त मूल्यों में भी कई बार बाबा ने ये कहा और ये लोग तो ऐसे हैं, ये क्या है, इसमें भी मुंझ जाते। इसलिए अपने आप को इसमें चेकिंग करना होगा। क्या चेकिंग करना होगा, मेरे को बाबा पर इतना निश्चय है, इतना प्यार है, इतना हमारे अंदर उमंग आता है जो मेरा बाबा है। जहां मेरा बाबा आता है वहां कभी भी कोई भी बात उलझा नहीं सकती है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा आंसर में, एक ही शब्द बोला, बाप साथ रखा है, समर्थ बाप। वो भी जब समर्थी बाप साथ है तो हमको कोई कैसे उलझा सकेगा। मगर इसके पीछे क्या है, हमारा दृढ़ निश्चय चाहिए वहां, क्योंकि निश्चय कमी तब होता है दूसरे बातों में जाते हैं, या वो ऐसा कहा, ये ऐसा हुआ, ये इन बातों में जाने के कारण ब्राह्मण जीवन में निश्चय की कमी होती है, वो भी पहला बाप में। बाबा ऐसा क्यों कहा? वास्तव में ज्ञान ये कहता है, वो क्या ब्रिजमोहन भाई को कहा, भले आप खाओ, मर रमेश भाई को छुट्टी दिया, मगर उनको नहीं छुट्टी दिया। ऐसा बातों का जो बाबा ने कहा, उस समय वो मुंझ गए, क्योंकि वहां ऑफिस का कारोबार है, वहां यदि उनके साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे, वो हटा देंगे। इसके कारण, मगर इसके लिए हमारा क्या चाहिए, बुद्धि क्लियरेंस चाहिए। आपको कोई भी बात, मैं कई बार ये बात कहा, समझ में नहीं आता है तो आप बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को बताओ, बाबा उस दूसरे मुरली में आपको जवाब देगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, जो बड़े अनुभवी बहने या भाई है, उनके साथ चर्चा करके उस बात का क्लियरेंस लो। आजकल जो ब्राह्मणों के अंदर कई बार ये बातें आती, ये ऐसा हो रहा, ये ऐसे बातें आ रहा, ये हो रहा, ये क्या है, ये सब बातों को छोड़ो। जो अपना इंटरनल पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो, क्योंकि एक एक ब्राह्मण के पीछे कई लोग पड़ेंगे, आपने भगवान से मिला है, आप हमारे सिर पे हस्त रखो वरदानी का। कब रखेंगे? हमारे अंदर भरपूरता ना हो, हमारे अंदर खजाने भरे हुए ना हो, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि आएगा ये समय, आएगा। अभी अभी देखो सेंटरों पे जो बहने, अभी दिवाली है, दिवाली में कई, गुजरात का प्रैक्टिकल कह रहा हूं, कई बहने उनके घर में जब पूजा होती है, पहले बहनों को घर में कदम रखने के लिए बुलाते हैं। इसलिए ये समय अभी आने वाली है, इसलिए हमारी पूरा तैयारी चाहिए, इंटरनली भरपूरता चाहिए। हमारे पास खजाना ही नहीं है तो हम दूसरों को दे नहीं सकेंगे। वो खजाना भरने के लिए पहले बाप में निश्चय चाहिए, वो भी कैसी, दृढ़ निश्चय चाहिए। फिर दूसरा स्वयं में निश्चय। स्वयं में क्या निश्चय चाहिए? मैं आत्मा हूं, ये तो सुन लिया ज्ञान, मगर मैं वो आत्मा हूं, कल्प पहले वाली आत्मा, वही आत्मा हूं, देव आत्मा हूं। ज्ञान सुनने से नहीं होगा, मगर वो हमारे अंदर वो धारणाएं चाहिए। आप सपोज एग्जाम्पल, अपने आप को कभी चेक करके देखो, आत्मा तो मैं दूसरों को सुनाया, आत्मा का ज्ञान, क्या मेरे स्मृति के अंदर दूसरों को जब देखता हूं, उस आत्मा को देख के मैं आत्मिक स्मृति में रहता हूं? अपने आप को चेक करेंगे तो पता चलता है, कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। मैं हमेशा अटेंशन रखता हूं, अमृत वेला योग करने के बाद, वहां से जब चाय पीने के लिए किचन में जाता हूं, वहां से वहां जाने तक मेरे अंदर आत्मिक स्मृति रही, जिसको भी देखा उसका आत्मा को देखते हुए वो स्मृति में रही। कई बार तो होता है, कई बार नहीं होता है। जैसा ही स्मृति में रहेंगे, अपने आप अंदर से वो खुशी महसूस होगा, इसका रिजल्ट है। क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा एक शांत चित्त स्वरूप है, वो उसका गुण है वो। इसलिए वो गुण, वो शक्तियां आत्मा की स्वयं एक संपत्ति है। जब आत्मिक स्मृति में रहेंगे, वो संपत्ति स्वतः ही आपके अंदर महसूस होगा। इसके लिए हमारा प्रैक्टिस जारी चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा समझो, एक घंटा, हम सवेरे शाम योग करते, मगर दिन के समय एक घंटे में एक मिनट या दो मिनट, तीन मिनट डिटैच होने का अभ्यास चाहिए। क्योंकि अभी हम वो अभ्यास करेंगे ना, वो हमारे अंदर क्या होता है, दूसरों को क्या सुनाते, सेवन डेज कोर्स में क्या सुनाते, संस्कार बनता है, जब ऐसी हम पक्का अपने अंदर ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं कभी ये समझो मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर उस शांति स्वरूप में खो गया, कभी ये समझो यहां से डिटैच होकर परमधाम में बाबा के साथ बैठा हूं, कभी ये समझो मैं इस शरीर से निकलकर मैं आत्मा फरिश्ता ड्रेस पहनकर चारों तरफ वाइब्रेशन दे रहा हूं। इस ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार की एक योग के अंदर रमणीकता चाहिए। मैं आत्मा हूं ये मजा नहीं आएगा। एक बार करेंगे, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच दिन तक चलेगा, मगर फिर वो नहीं। योग को एक नवीनता चाहिए, एक हमारे अनुसार उसको अपना अनुसार बनाना होगा। अभी समझो रोज बैंगन खाना है, बैंगन बुढ़ता ही खाना है, वो तो मजा थोड़ी आएगा। एक दिन होगा, दो दिन होगा, तीन दिन होगा। इसी तरह ज्ञान का, योग का नवीनता चाहिए। बाबा ने कितना, अभी रोज हम लोग अभी अमृत वेला सुनते हैं ना, बाबा इस विधि से याद करो, एक सेकंड के लिए विदेही बनो, अमृत वेला बसता है ना। ऐसा अपने आप अंदर चेक करो, मैं सचमुच ऐसा डिटैच हुआ हूं, विदेही बना हूं, अशरीरी हुआ हूं? नहीं हुआ तो मेरे को कौन सी बात खींच रहा है? और ये अंडरलाइन करना होगा हम लोगों को, अभी समय के अनुसार अमृत वेले को कुछ भी हो जाए पावरफुल योग करना ही होगा, वही हमको सारा दिन मदद करेगी। क्योंकि अमृत वेले का योग के बिना सारा दिन ब्राह्मण जीवन में खालीपन रहेगी। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर चुका हूं, मेरे साथ सारा दिन में कई बार कई बातें होती है, मगर वो अमृत वेला योग के कारण उन बातों का सहज सरल पास करता हूं। इसलिए हमारा योग की जो आत्मा का स्मृति जो है हमारे अंदर, क्या बाबा का हिस्ट्री पढ़ा है ना, बाबा ने क्या किया, साकार बाबा का हिस्ट्री में साकार बाबा ने शुरू में क्या किया, यशोदा आत्मा, ब्रजेंद्र आत्मा, बाबा को पक्का था मैं जाके विष्णु बनूंगा, लक्ष्मी नारायण नारायण बनूंगा, मगर फिर भी बच्चों को सिखाने के लिए प्रैक्टिस किया, दीवारों पे लिखा यशोदा आत्मा, ब्रजेंद्र आत्मा बोल के। क्या नंबर वन आत्मा भी इतना प्रैक्टिस किया है तो हम कितना प्रैक्टिस करना होगा, कितने हमारे अंदर कूट कूट कर भरना होगा। जो हृदय पुष्प दादी, जो टिक्कन दादी कहते, कर्नाटक जोन की इंचार्ज थी, उसने जब बाबा के पास आई थी, रोते हुए आई थी, उनका पति या कोई शरीर छोड़ा था, उसके कारण रो रही थी। बाबा के पास जब आया, बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, बस उसी समय उनकी सारा वो उलझने माना, सब मन की भ्रांतियां सब निकल गए, बस मैं आत्मा हूं। जहां भी जिसको क्लास, मेरे याद है तांडूर आई थी, माना तांडूर माना जहां मैं रहता हूं आंध्र प्रदेश तेलंगाना का, वहां क्लास कराई थी दादी ने यही बोला, आत्मा हूं, आत्मा क्यों रोती हो, तुमको रोना नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है, उसको रोना कहां से आएगा। ये ऐसा अपना अनुभव सुनाती थी, वो अनुभव से कितने लोग अपने को परिवर्तन करते थे। प्रैक्टिकल की बात आई है, मैंने देखा है, वहां नए लोग आए थे उस समय सेंटर पे, उनको भी ये महसूस हुआ। ऐसा हमारा स्थिति बनना चाहिए। क्या एक बार अपने आप से पूछो, मैं किसी को एक सेकंड के लिए दृष्टि दिया, वो आत्मा उड़ गई, वो आत्मा महसूस किया अपने को देह से न्यारा हूं? चेक करो। और सदा अभी दादियां आती है, या दादियां हो, बड़े भाई हो, उनके पास क्यों हम दृष्टि लेने के लिए जाते, क्योंकि उनके अंदर वो स्थिति ऐसा बनी है, ऐसा पावरफुल है। हम भी अभी छोटे ही रहेंगे, हम भी बड़े बनेंगे, अर्थात हम भी किसमें बड़े बनेंगे, स्थिति में बड़े बनना है। भले मेरे कोई पूछे ना पूछे, मगर हमारा स्थिति होंगे तो स्वतः ही वो आगे हो जाएगा। इसलिए अभी चाहिए हमारा आत्मिक स्मृति की पावरफुल, इसमें हमको निश्चय चाहिए। जब निश्चय होगा कभी भी किसी बात का उलझन उलझाएगा नहीं। उलझता कब है? जब धागा सीधा होता है कुछ नहीं होता है, जब गुच्छा हो जाता है उलझ जाती है। उलझने के बाद उसको निकालो, कितना भी निकाल के करो मगर उसका उलझन रहता ही है। इसलिए कभी भी उलझन में नहीं आओ, वेरीफाई कर लो, बाबा से करो, दादियों से करो, या बाबा की मुरली खोल कर पढ़ो, अव्यक्त मुरली ऐसा खोल के पढ़ो, उसको आपको जवाब मिलेगा। ये हमने अपना जीवन में कई बार कर चुका हूं, क्योंकि हम लौकिक में सब एक तरफ थे, मैं अकेला एक तरफ था, क्योंकि ज्ञान के एंटी थे। उसके कारण मैं पास तब हुआ, ये अव्यक्त मुरलियों से ही पास हुआ। कोई भी बात आता था तुरंत मैं या बहनों से वेरीफाई कर लेता था क्या करना है। मैं सिर्फ एक बात सुनाता हूं, बीच में मेरे को शादी का निर्णय कर दिया था मैंने बचपन में ही नाम रखते हैं लौकिक में है, तो फिर बड़े पापा ने बोल आपको उनसे शादी है। तो मैंने बहनों को पूछा, बहनों ने युक्ति बताया, आप 2 साल के बाद करेंगे बोल के बोल दो। मैंने बोला ये कैसा हो सकता है, मेरे को तो करना नहीं है। नहीं नहीं आप ऐसा बोल दो, मैंने बोल दिया। फिर 2 साल क्या, 6 मास के अंदर उनको पता चला ये करेगा नहीं। हाँ, ये फिर विघन बहुत आया। फिर हमने क्या किया, उसके जो लड़की का पिता था उनको फिर सेंटर पे लेके आया था, उनको सारा ज्ञान सुना। वो तो और उसको तो पक्का हो गई, ये तो गया काम से। हाँ, इसलिए कोई भी बात उलझन तब होता है, पहला हमारा मन एकदम शांत होता है तो उलझन नहीं होता है। शांत नहीं, कंफ्यूज है। ये पहले पहले शुरू में बाप दादा बोलता था विदेशियों को, कंफ्यूज हो जाते थे, ये कैसा वो कैसा ये। मगर भी फिर 5-6-7 साल के बाद बाबा उनका कई लोग आने के बाद अभी कंफ्यूज से ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान की क्लियरेंस जब होता है व्यक्ति को कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, उलझन में नहीं आएगा। इसलिए जब स्वयं में इतना दृढ़ निश्चय हो, मैं कल्प पहले वाली वही देवी आत्मा हूं, मेरे अंदर दैवी गुण समाया हुआ है, वो दूसरों को जब सुनाते आप आत्मा, मैं आत्मा ऐसा परफेक्ट हूं, ये चेक करना है। फिर तीसरी बात आती है ड्रामा। ड्रामा जो है, ड्रामा इतना सुंदर है, इतना अविनाशी है, उसको हम समझने के लिए सिर्फ हमारा बुद्धि का क्लियरेंस चाहिए। अभी कल दिवाली दीपावली बनाया, स्टेज पे सिर्फ थोड़े से लोग थे, संकल्प आया हम भी तो इतने साल हो गए हम स्टेज पे, हमको बुलाते ही नहीं। मगर ड्रामा में वो पार्ट था, बस आप अपना मस्ती में रहो, अपना खुशी में रहो, जाओ बाबा के साथ और आधा घंटा ज्यादा योग करो, देखो आपका उसका आनंद क्या आता है। वो तो स्टेज पे जाना है 1 सेकंड के लिए होता है, मगर वो जो आनंद है जो बाबा की मिलन की, वो सच्ची दिवाली कहेंगे या सच्ची आत्म अनुभूति कहेंगे, क्योंकि अभी इन बातों में रखा नहीं है। जिस आत्मा परफेक्ट है, जिस आत्मा के अंदर ज्ञान की भरपूरता है, उस आत्मा कभी भी किसी के प्रभाव में आ नहीं सकती है, ये गारंटी है। और ज्ञान की उसमें क्लियरेंस है, आता है, बातें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मूर्ति ऐसा नहीं बनेगी, हथौड़ी लगेगी, चिन्नी हथौड़ी अच्छी तरह लगेगी, बाबा ऐसा नहीं देगा। मगर एक एक चन्नी लगे तो यही समझो मेरा मूर्ति अच्छा बन रहा, निकल रहा, क्योंकि अनुभव किया है ना आशीष भाई ने कोविड के प्रोग्राम में। इसलिए हम आत्मा का ये दृढ़ निश्चय का अनुभूति चाहिए, उसलिए ड्रामा का भी हमको ये जो बीता सो बस फिनिश, बिंदु लगाओ। उसको ज्यादा सोचो नहीं। सोचने से मन भारी होगा, उलझन आ जाएगा, उलझन आने से योग नहीं लगेगा। हम जितना सोचते जाएंगे ना, वो मन उलझता जाएगा। इसलिए सोच को अर्पण कर दो बाप को, बाप के सामने रख दो, बाबा आपको अपने आप शक्ति भरेगा। बाबा ने एक अच्छी पॉइंट सुनाया, क्या है? सिंपल पॉइंट है मगर बहुत काम की पॉइंट। क्या है? हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। एक कदम आप आगे रखो, हजारों कदम बुझा वाला बाप मदद करने के लिए रेडी बैठा है। हमने एक बार अनुभव सुना मुन्नी बेन की। मुन्नी बेन ने कहा, ब्रिजमोहन भाई मुन्नी बेन से वार्तालाप हो रहा था, वो बहन जी को वो एक ही शब्द था। ब्रिजमोहन भाई ने कहा, हजारों बाप बुझा वाला बाप आपके साथ है, आपको क्या बात है? जब दादी जाने के बाद की बात है ये। बस मुन्नी बहन को उस एक छोटी सी पॉइंट ने कितना दृढ़ निश्चय कर दिया। क्या सचमुच ये हम बाप की मदद को यूज कर रहे? आप यूज करके देखो, कभी भी कोई आपका हेवी वर्क है, आप इतने समय में नहीं कर पाएंगे मगर करना है, तो तब आप बाप को आह्वान करो। कई मधुबन वालों का यह अनुभव है, बाप को साथ अनुभव साथ रखकर वो सेवा यदि एक घंटे का में पूरा होता था, वो आधा पौना घंटे में पूरा कर दिया। कैसा? बाप को साथ लेकर, क्योंकि उसमें एनर्जी बटेगा नहीं, एक बाप के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो तब और बाप और सेवा दो ही, वहां कुछ नहीं। इसलिए जितना संकल्प बढ़ जाएगा उतना हमको ज्यादा एनर्जी यूज करना होगा। इसलिए जहां निश्चय बुद्धि विजयंती, जहां बाप और ड्रामा स्वयं में निश्चय है, वहां कभी भी कोई भी बात किसी प्रकार की उलझन फायदा नहीं कर सकती है। इसलिए हमेशा ये समझो, उलझन फायदा करने वाला एक ही है। एक ही क्या है? मन चंचल। मन को स्थिर बनाओ। गीता में भी है ना, स्थित प्रज्ञ, स्थिर होना चाहिए मन। इन बातों से चाचा मामा काका ये सब छोड़ो अभी। बस हम इस देह से निकले हैं, बस बाप की अनुभूति में खो जाओ। समय है, ये समय अभी है, अभी हम ये बैठे सुन रहे, मगर आगे जाके ये समय भी नहीं मिलेगा। हमको याद आता है, सुशील भाई को भी याद है, रतनबेन दादी यहां जब ऊपर पांडव भवन में आती थी, कहती थी संगठन बनाओ बैठो। दादी खुद बैठ के सबको बुलाती थी ज्ञान चर्चा के लिए। देखो वो समय भी अभी बीत गए। बाबा एक एक को अव्यक्त बाबा रातों वरदान देता था, वो भी बीत गए। अभी बाबा भी हम क्या अभी वीडियो द्वारा देख रहे, मगर ये समझेंगे हम वीडियो द्वारा देख रहे ना, मगर जिसकी स्थिति पावरफुल है वो वीडियो चल रहा, मगर उस आत्मा को ये महसूस होता है कि बाबा सामने हमको मुरली सुना रहा। हमने प्रैक्टिकल अभी इस पिछले बारी की मुरली में वहां आंगन में बैठा था, बाबा को बाबा आया तो मैं स्थिति अच्छी थी, जैसे ही मैं टीवी को देखा, मगर उस एक पांच मिनट के लिए ऐसे महसूसता हुआ मैं टीवी को नहीं देखा, बाबा मेरे को पावरफुल दृष्टि दे रहा था। बाबा चाहे कुछ भी अनुभव करा सकता है, मगर पात्र चाहिए ऐसा। जब पात्र बनेंगे तब अनुभूति में खो जाएंगे। आप देखना, जब अनुभूति में खो जाते हो स्वतः ही आंखों से वो मोतियां गिरेगी, और वो जैसा स्थूल में बोलते हैं ना पागलपना, बस उस खुशी में उस नशे में खो जाएंगे। इसलिए मन में व्यर्थ बातों के कारण मन बुद्धि की लाइन लय मन बुद्धि की लाइन क्लियर है तो कोई भी उलझन नहीं होता है। कब? मन में व्यर्थ बातें ना हो और मन बुद्धि की लाइन क्लियर हो। अनेकों के पुरुषार्थ को देखने के कारण उलझन कब होती है? अनेकों को पुरुषार्थ को देखने के कारण। मगर पुरुषार्थ को देखना एक अच्छी बात भी है। कौन सी अच्छी बात है? जो पुरुषार्थ श्रेष्ठ संगठन है, जो बाबा की मुरलियों में, चर्चा में, ज्ञान में, मगर दूसरे पुरुषार्थ, वो अमृतवेला योग चल रहा, वो सो रहा, उसको देखने से क्या होगा? हाँ, वो भी सो रहा, इतने साल का है, सो रहा, मैं भी सो जाऊं, 5 मिनट सो जाऊं, मगर गया ना आपका का घाटा हो गया ना उसको देखने के कारण। ऐसे दूसरों को देखने के कारण हमारे ऊपर इतना असर होगा कि वो ऐसे ही सो रहा, मैं भी ऐसे ही सो जाऊं, वो मुरली में नहीं गया, घूम रहा, मैं भी ऐसे घूम। मगर बाबा की श्रीमत क्या है? वाचे चेक ये करो, बाबा ने क्या कहा? अमृत वेला क्या है? मेरे बच्चों के लिए टाइम दिया हुआ है, वरदानों से झोली भरने का टाइम है। उस टाइम यदि हम सो रहे, बाबा मुरली चला रहा, मगर कोई भी चला रहा, मगर बाबा मुरली सुनाने के लिए टाइम जो मुकरर किया, उस टाइम मैं मुरली सुन रहा हूं। जो बाबा पूरा दिन की श्रीमत दिया, उस अनुसार चल रहा हूं। उसके बजाय दूसरों को देखने से हमारे ऊपर बहुत असर होता है, उसलिए उलझन आ जाता है। जब दूसरों को देखने के बजाय बाप को देखेंगे, बाप को फॉलो करेंगे, तो कभी उलझन आ नहीं सकती है। और दूसरी बात, ज्ञान की गहराई की चिंतन हो। ज्ञान की गहराई की चिंतन माना, कोई भी पॉइंट को ले, उसके डेप्थ के अंदर जाओ। माना अभी समझो, बाबा ने ये कहा, याद की यात्रा में रहो, कहा, मगर याद की यात्रा में रहो, ये बाबा ने कहा है, मैं सचमुच याद की यात्रा का अनुभूतियां कैसे कर रहा हूं सारा दिन में? मेरा याद की यात्रा कैसे बढ़ सकता है? मेरा याद की यात्रा में कौन से विघ्न आ रहा? मेरा याद की यात्रा जो मैं चाहता हूं उतना पावरफुल बन रहा? मेरा याद की यात्रा में कुछ नवीनता की अनुभूतियां हो रहा? इस तरह एक पॉइंट को भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को चेकिंग करना है। वो भी आप सारा दिन में 10 मिनट एकांत में बैठो, बगीचे में बैठो या कहां भी एकांत स्थान में बैठ के अपने आप को टटोलो, चेक करो कितना परफेक्ट हूं, कितना मेरे अंदर परफेक्शन आया है, कितना अंदर बाबा मेरे से कुछ कराना चाहता है वो मैं कराने लायक बना हूं। जैसा बाबा अमृत वेला वरदान देना चाहता है, हम सोए रहेंगे तो वरदान कहां से पाएंगे? इसलिए ऐसा बाबा हमको देवता ही संस्कार भरना चाहता है, हमारे अंदर है, मगर वो स्मृति में लाना पड़ेगा। ऐसा ही ईश्वरीय परिवार के अनुभवों की कमी। जब हम ब्राह्मण बने हैं, माना ब्राह्मण बन गए, मगर हम एक परिवार के, एक पिता के संतान, ये स्मृति रहती है। ये स्मृति कब रहेगी? जब बाबा, शुरुआत में यही बोला, बाबा पर निश्चय है, बाबा ने हमको एक परिवार में बांध के रखा है, उस परिवार का भासना आवे। परिवार का भासना कब नहीं आ सकता है? जब हम लिमिटेड हो गए, माना हद में आ गए। बेहद की ईश्वरीय परिवार हमारा बाती है। ऐसे स्मृति रहे तो किसी के प्रति किसी भी बात में कोई उलझन नहीं हो सकती। बातें तो छोटी मोटी क्या होता है, होती ही रहती है, लेकिन बातों को देखते हुए भी उन बातों को हमारे में समाने की शक्ति होगी तो किसी प्रकार की उलझन नहीं होती। बातों के बजाय बाप को देखो, ये तो वो गीत है ना, एक खुदा, खुद ये मत कहो मगर खुदा बड़ा है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, साइड सीन क्या होता है, ब्राह्मण परिवार में जब बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद सबसे बड़ी इफेक्ट पड़ती है साइड सीन की। साइड सीन की इफेक्ट क्यों पड़ती है? साइड सीन की इफेक्ट तब पड़ती है हमारा एकाग्रता की शक्ति की कमी के कारण, हमारा बुद्धि की एकाग्रता नहीं है तब साइड सीन में। जब आप गाड़ी में बैठे उधर जा रहे हैं, वहां बहुत अच्छा पिक्चर लगी है, पिक्चर का पोस्टर लगी है, उधर बुद्धि गई। मगर इधर ब्राह्मण परिवार में क्या होता है, हम चल रहे ज्ञान में मगर दूसरा वो जिस समय जो काम करना है, माना जैसा मुरली के समय वो, ईश्वरीय सेवा के समय वो सेवा के समय वो वहां गप्पा मार रहा या टाइम पास कर रहा, तो उसको देखा वो, अरे यार ये तो हम तो इतना सेवा कर रहे हैं फिर भी ये देखो ये तो गप्पे मार रहे इधर, या इधर वो फ्री है। एक बार क्या हुआ, लाइट हाउस में जो हर एक का ड्यूटी अपना अपना टाइम से होता है, वो एक सेवादारी को आया था, एक गया सवेरे 9 बजे करीब वो एक किसी को बुलाने के लिए, वहां एक भाई सो रहा था, तो समझे ये तो सोते रहते मधुबन वाले। फिर दूसरी बार गया, वो दूसरा कमरे में गया, वहां भी वो 11 बजे करीब वो सो रहा। फिर तीसरे कमरे में ऐसी हुआ, मगर ये नहीं सोचा उन लोगों का ड्यूटी अलग अलग है, हर एक का। इसीलिए उस साइड सीन की जो इफेक्ट है आत्मा के ऊपर बहुत जल्दी पड़ जाती है, इसलिए साइड सीन से हम बचे रहना है। बचे रहने के लिए साथी को साथ रखो, बस। देखो बाबा ने कहा है कि एक के साथ ही सारे रिश्ते रखकर एक की ही रास्ते पर चलते रहो, एक के साथ रिश्ते रखकर एक की रास्ते पर चलते रहो। इधर उधर देखने के बजाय हम अपने पुरुषार्थ के प्रति ध्यान दे तो क्या होगा, मन मना भाव होना सहज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, अंदर ईश्वरीय खजानों से भरपूर होना है। ईश्वरीय खजाने क्या है, गुण शक्तियां सब, हर खजाने से भरपूर कब हो सकते हैं, ये चिंतन का विषय है। खजानों से भरपूर कब हो सकते, उसके प्रति टाइम देना होगा और उसके प्रति हम चेक करना होगा बार बार। सिंपल बात है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये हमारी खजाना है। तो ये खजाना हम बार बार हमको अपने आप को चेक करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं ऐसा बैठा हूं, बैठ के एकदम मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मेरा इंटरनली वो फील हो रहा, वो शांति हमारे अंदर गहरी अनुभव कर रहे, अनुभूति हो रहा। कब अनुभव होगा, उस डेथ में जाके ऐसी स्थिति में खो जाओ। बहुत सुंदर अनुभव होगा, इसका मैं कई बार कर चुका हूं। बस मैं आत्मा शांत चित होकर वो शांति के सागर के किरणों में लहरा रहा हूं, बस वो शांति के किरणें मेरे पर पड़ रहा, वो कहां जा रहा वो छोड़ दो, उतना ही संकल्प करो। वो जा कर रहे वो सोचो नहीं, जहां जाना है जिसको फिर एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही बैठा था शांति स्तंभ के पास, वो एक मिनट के लिए बैठा हूं, उधर से एक भाई जा रहा था, वो मेरे ऐसा देख रहा नजदीक आके, ये क्या हो रहा। फिर उसके बाद दो मिनट के बाद बोलता, भाई जी आप बहुत अच्छा योग करते हो। मैंने बोला क्या हुआ, बोला मेरे को शांत, मेरा कोई संकल्प चल रहा था, आपको चेहरा देखने से शांत हो गया। माना ऐसी हमारी स्थिति हो जो एकदम किसी को भी एक सेकंड के लिए शांति में ठिकाने की, वो हमारा स्थिति से ही बन सकता है, वो स्थिति ही उनको अनुभव करा सकता है। दूसरी पॉइंट, योग की गहरी तपस्या की अनुभूतियों की कमी, वो तो सुना दिया। योग को एक रमणीक रूप से अनुभव करना होगा। आज आप बाबा के कमरे में बैठे हैं, कमरे में बैठने से बाबा तो सामने है ही है, मगर बाबा को, बाबा आपको वरदान दे रहा, आप बाबा का अस्त्र मेरे सिर पर है, ये वहां बैठे भी अनुभव करे, देखो उस समय क्या अनुभूति होता है। जिसको कोई भी संकल्प नहीं चलता, वही संकल्प में टिका है, तो जरूर ये अनुभव होगा, बाबा मेरे सामने खड़ा होकर मेरे सिर पर हाथ रखा है। या कभी ये अनुभव करो, विश्व के गोले पर हम बैठे हैं, बाबा अव्यक्त बाबा या बाप दादा हमको शक्तियां दे रहा, पूरे विश्व में वो मेरे से अंदर आकर पूरा विश्व में व्यापित हो रहा, वो सब एकदम शांत चित हो जाएंगे। इस तरह हम एक एक चीज का गहरी अनुभूतियों में जाएंगे तो वो हमारा स्थिति ही उनको जवाब देगी। दूसरी कारण, उलझन का एक बड़ा कारण है कि अपने पुराने संस्कारों का संस्कार, जो आदत है, कहेंगे भाई जी मेरा तो ये आदत है ना। अरे भाई आप आदत कहां से आई, ये तो अभी की आदत है, आप जरा पलट के देखो अपना ईश्वरी ये दैवी जन्म की, वो संस्कार क्या है आपका, ये संस्कार क्या है, ये तो बीच में आया है, वो अपना बना लिया आपने, मगर वो संस्कार को इमर्ज करना है। इसलिए वो संस्कार को बार बार स्मृति में लाना है, बार बार उस चीज में रमण करो, सत्युग में कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे घूमते हैं, क्या दिनचर्या होता है। एक मुरली पूरा है 1969 की, इसमें 1980 की मुरली, हाँ सात फरवरी 1900 इसमें वो मुरलियां है, पढ़ के देखो उसका बड़ा आनंद आता है, वो मुरली पढ़ने के बाद अनुभूति, बड़ी अनुभूति होती है उसमें। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अपने निश्चित भविष्य के स्पष्टता की कमी है। इसमें क्या है, हम देवता बनेंगे ये हम ही कंफ्यूज है, तो उसमें क्या होगा, मन उलझ जाएगा, इसलिए उसको भी हम स्पष्ट रहे हमारा इसमें क्या आता है। साकार बाबा क्या कहता था हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाने से, मैं विष्णु कृष्ण बनूंगा कृष्ण, ऐसा कगिया मारता था वो, बड़ा लच्छू दादी बड़ा ऐसा सुनाती थी हमको कई बार। दूसरी पॉइंट, आशाएं अनावश्यक इच्छाएं। आशा क्या होती, ब्राह्मण परिवार में आ गए हम लोग, मगर आशा क्या, देखो वो कितना अच्छा जैकेट पहना है, हमको भी ऐसा जैकेट होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगे हमको, मगर हम वो जैकेट किस लिए पहना, वो अपने को कुछ ढकने के लिए, माना उसका ठंडी से बचने के लिए इस तरह पहना है, मगर हमको भी चाहिए, वहां क्या होगा, मन गया माना उलझन में आ गए। इसलिए इससे भी मुक्त होना है, इससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा पॉइंट बुद्धि में रखना चाहिए। एक स्लोगन था शुरू शुरू में, बहुत अच्छा, कई जगह पे था, इच्छाएं कम करो तो अच्छा बन जाएंगे, समस्याएं सता ही खत्म हो जाएगा, इच्छाओं के कारण ही समस्या उत्पन्न होगा। वो इच्छा नहीं कहेंगे मगर संकल्प है। दूसरा, परिवार, परिवार में प्यार की कमी, वो तो आई है क्लियरेंस। परिवार में है माना हम ईश्वरीय परिवार में है, एक दूसरे की कमियों को देखते हैं, देखने के कारण वो प्यार की कमी महसूस करते, उसके अंदर अभी तक वो संस्कार है, वो 50 साल वाला ऐसा है, 20 साल वाला ऐसा है, वो मगर किसको देखना है, फॉलो फादर करो। हमारे सामने दादियां हैं, दादियों को, दादी प्रकाशमणि को देखा हमने एक बार, ऐसी था इंटरनेशनल योग का वो गीत बजता है ना, मैं फटाफट शाल टाइम हो गया था, गीत बज रहा था, गीत पूरा होने से पहले पहुंचना है, दादी कह रहे थे, दादी ऑफिस में थी, मैं ऑफिस के सामने से गुजरता, मना इंटरनेशनल योग में जा रहा हूं, दादी वहां कारोबार छोड़ा, फटाफट दादी भी ऊपर आ गए। मैंने देखा भाई कितना, दादी कुछ ऐसी कारोबार में थी मैंने देखा ऑफिस में, मगर फटाफट इंटरनेशनल योग में दादी आ गए 2 मिनट के बाद। दूसरी पॉइंट, एक दो के संस्कार को ना जानने के कारण उलझन होती है। जैसा हम ब्राह्मण परिवार है, हम मधुबन वाले हैं, तो एक दो का उलझन माना संस्कार, उसका संस्कार है भाई, वो भाई का संस्कार है, वो ऐसा बोलेगा, आप शांत चित्त होकर रहो। एक बार याद है मेरे को, मैं नाश्ता कर रहा था, एक भाई आया मेरे को बहुत गुस्सा किया, तो मैं सिर ऊपर उठाया नहीं, नीचे खाता ही रहा खाता ही रहा, बस वो अपने आप चले गए। उस तरह हम अपने को कैसा मोल्ड करना वो अपने ऊपर है, अपने अंदर ज्ञान की जितना धारणाएं होंगे उतना मोल्ड कर सकेंगे। इसलिए बातें आएंगे सब आएंगे, उलझन से बचने के लिए सदा एक बाप दूसरा ना कोई। जानकी दादी का क्या था स्लोगन, मैं कौन मेरा कौन, बस इसका परफेक्शन में, इसके डेथ में जाओ, बस गहरी अनुभूतियां होते रहेंगे और इस उलझनों से मुक्त हो। ओम शांति।
शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसी चंदन, सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसी कुंदन, शुभ I'm not afraid.